ईरान में तो एक सर्दी की लहर जो है वो दौड़ गई है। तो ये जो कूलर का दर्द जो आज का टॉपिक है हमारा, आज का जो मौजू है, तो क्या सर्दी की वजह से भी ये दर्द हो सकता है?
देखिए, सर्दी की वजह से अगर तो पहले से कोई अंदर मसला नहीं है तो फिर तो ऐसा नहीं होगा कि आपको दर्द शुरू हो जाए। लेकिन जिस्म के हिस्से में किसी भी तरह का कोई अंदर कोई मसला चल रहा है, पहले से कोई चोट पुरानी है जो उसको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकती है उस हालत को पहले वाली को, तो उस सूरत में ये होता है कि अगर दर्द हल्का है तो सर्दी की वजह से वो ज़्यादा हो जाता है। और उसकी वजह जो है, मेरे ख्याल पिछले प्रोग्रामों में हमने उसका थोड़ा सा उस पर जिक्र किया था
जी
कि उसकी वजह ये होती है कि ये जो दर्द के रिसेप्टर होते हैं, नॉसिसेप्टर, ये जो हैं सर्दी की वजह से जो है ये इस पर सर्दी से हसास होते हैं। और जब ये सर्दी इनको जिस्म को लगती है तो वो रिसेप्टर उस पैगाम को, दर्द के पैगाम को ज़्यादा हमारे दिमाग तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जब जब हमें वो हालत, उस हालत का सामना करना पड़ता है तो हमें दर्द जो है वो ज़्यादा महसूस हो रहा होता है।
अच्छा, कूल्हे की दर्द की जब हम बात करते हैं तो ये जो दर्द होता है ये आमतौर में पट्ठों में होता है या जो हड्डी होती है उसमें होता है?
जी देखें, दर्द जो है, इंसान मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार होता है, मुख्तलिफ तरह के जो हमें जब बीमारी आती है तो उसकी वजह से परेशानी,
जी
और अक्सर जो बीमारियां होती हैं उनके साथ जो है हमें दर्द का सामना करना पड़ता
जी
है। अब वो अब देखें कि सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो इंसानी मुआशरा है उसमें जिस बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है वो सर दर्द है, फिर उसके बाद कमर दर्द है। तो ये दर्द जो है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें जो है आपको दर्द भी नहीं महसूस होता, आपको पता भी नहीं चल रहा होता, आप अंदर अंदर से जो है वो पूरी तरह तबाह हो रहे होते हैं, लेकिन अक्सर जो है उसमें दर्द इसके साथ होता है, बीमारी के साथ। तो अब जब दर्द होता है तो अपने हम इंसानी जिस्म को अगर देखें तो अब ये मुख्तलिफ जो है, इसके मुख्तलिफ अज्ज़ा हैं, मुख्तलिफ तरह के पट्टे हैं, शरियाने, वरीदें जो हैं, हड्डियाँ,
जी
ये पूरा एक ढांचा है और उसको जो है वो पूरी मुख्तलिफ जो है स्ट्रक्चर्स उन्होंने सपोर्ट दी हुई है। तो जो दर्द की जो इब्तिदा है, इस किसी भी साख, किसी भी सिस्टम जो है, निज़ाम जो है, इससे शुरू हो सकती है।
जी इससे पहले कि आपने बताया कि अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ों में रगों की प्रॉब्लम हो सकती है या पट्टों की या हड्डी की, तो एक आजकल बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हड्डियों और पट्टों में मेरे ख्याल से जो बीमारियां हो रही हैं वो बैठ के जो ऑफिस का काम होता है, अब यानी बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं या खुसूसन जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, तो क्या उससे भी कुछ परेशानी हो सकती है या नहीं?
जी बिल्कुल, चूँकि आप आज का हमारा मौजू जो है वो कूल्हे का दर्द है, इसमें जब बैठ के काम करते हैं तो बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल जो मसाइल हैं उसका हमें सामना करना पड़ता है। अब देखिए, ये जो पट्टे हैं इनकी, या ये असाब सारे काम कर रहे हैं, या खून की जो तरसील होती है, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब की एक कैपेसिटी होती है, एक ख़ास हद तक जो उस कुव्वत को, एक जो दबाव होता है उसको बर्दाश्त करते हैं। पट्ठों को भी एक सहारने की जो है, एक ख़ास हालत में बैठ के उस काम करने की एक सलाहियत होती है। वो
जी
देखिए, रुक के एक ही जगह के, एक स्टैटिक जो है एंड्योरेंस होता है, एक डायनामिक होता है। तो अब जब बैठ के कोई काम करता है तो अगर बिल्कुल उसकी हालत भी ठीक हो, अगर उस दौरानिया जो है उसका लंबा हो, लंबे दौरानी के लिए किसी एक हालत में ज़्यादा वक्त के लिए जब वो बैठ के काम करेगा तो फिर भी जो पट्टे हैं वो थकावट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो एनर्जी, तवानाई चाहिए होती है वो मतलूबा उनको तवानाई नहीं मिल पा रही होती है, तो इसकी वजह से मसल फटीक होती है। फिर जब ये मसला आता है तो उसके साथ जो है आपको थकावट के बाद पट्टे में जो है एक दर्द जो है, एक नाराहती का एहसास जो है वो होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ अगर आपकी पोजिशन, बैठने की हालत वो ठीक नहीं है तो उसमें ये होता है कि अगर आप एक ख़ास हालत में बैठे हैं तो आपके जो अंदर का ढांचा होता है, मिसाल के तौर पे रीढ़ की हड्डी है,
जी
उसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती हैं। जब वो तब्दील होती है तो पट्टे जो हैं, पट्टों का एक बैलेंस होता है दोनों तरफ, सामने पीछे, दाएं तरफ बाएं तरफ, तो जब बैलेंस एक तरह से डिस्टर्ब हो रहा था कि मिसाल के तौर पे बात करें कि अगर कोई किसी का पेट निकलना शुरू हो गया है तो उसमें ये होता है कि सामने वाले जो पट्टे हैं वो ढीले हो जाते हैं, पीछे वाले जो पट्टे हैं उस वो एक ख़ास हालत को बरकरार रखने के लिए उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो फिर दर्द का एहसास जो है पीछे हो रहा होता है, जो कंप्यूटर पर लोग बैठते हैं उनके कंधों में बड़ा, गर्दन में मसला बन रहा होता
जी
है, तो इस तरह के मसाइल जो हैं उसका सामना करना पड़ता है। अब
आपने
चूँकि
जी
आज का हमारा मौजू जो है वो कूल्हे पे इसको मरकूज रखते हैं। तो अब देखें कूल्हे के जो दर्द होता है उसमें कूल्हे के जो इसमें मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, इसमें हड्डियाँ हो गई, ये कूल्हे वाला जोड़ जो है वो बड़ा अहम होता है, और इस हड्डियों के बाद जो है नर्वस सिस्टम जो ऊपर से आ रहा होता है, असाब नीचे जो असाब की तरसील होती है टांगों की तरफ, वो जाहिर है इस हिस्से की तरफ से उसने गुजर के जाना होता है। फिर जोड़ को मजबूती के साथ जब वो थामा होता है तो उसमें जोड़ की मजबूती में जो अहम किरदार अदा करती हैं, एक तो वो जोड़ की साख जो है वो किस नौयत की होती है, मिसाल के तौर पे कूल्हे वाला जो जोड़ है उसमें आप देख सकते हैं कि एक रिंग सा एक सॉकेट सा बना होता है, और उसके ऊपर जो है हमारी टांग में जो एक हड्डी होती है वो आगे एक गर्दन की सी शक्ल इख्तियार करती है, और फिर आगे एक वो आपको गोला सा नजर आता है। अब ये गोला जो होता है ये पूरी तरह उस सॉकेट में पूरी तरह फिट नहीं होता, ये थोड़ा सा बाहर होता है, उसके ऊपर एक रिंग सा बना होता है, उस जो है वो एस्टेबुलम जो है उसमें लेब्रम वाला ऊपर वाला एक कार्टिलेज की तह होती है, उसने उसको सहारा दिया होता है। अब देखिए जिस्म के अंदर बाज जोड़ होते हैं कि जो जहाँ पे हमें मजबूती की ज़रूरत होती है, मिसाल के सर की हड्डियाँ, सर के जो दिमाग है उसमें उसकी हिफाजत हमें दरकार होती है, बाज जगहों पर हमें हरकत चाहिए होती है, वहाँ पर मजबूती को हम हरकत के लिए कुर्बान करते हैं। अब ये वाला जोड़ जो है ये भी इसी तरह का है, अब जब हम टांग को मुख्तलिफ अतराफ में घुमाते हैं, चलते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, तो अब ये यहाँ पे जब इस जोड़ में हमें हरकत चाहिए होती है तो मजबूती को कुर्बान करके हम हरकत लेते हैं। अब जो इसके इर्द गिर्द लिगामेंट्स होती हैं, पट्टे होते हैं, तो अगर कोई मसला बनता है, ज़्यादा एक गलत किस्म का इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा उस हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे कोई चोट लगती है, अंदर कोई मसला बन जाता है इस पूरे ढांचे में, तो फिर यहाँ पे जो है वो दर्द का एहसास शुरू हो जाता है।
कभी कभी जब जोर दिया जाता है तो उसकी वजह से मसाइल पेश आते हैं, एक्सरसाइज जो करते हैं, वर्जिश जो की जाती है, तो उसकी वजह से भी इस पे खिंचाव आ सकता है।
बिल्कुल, देखें इस तस्वीर जो है अभी एक स्क्रीन पे तस्वीर भी है, तो ये लिगामेंट्स होती हैं। अब लिगामेंट्स, इन्होंने दो हड्डियों को आपस में जोड़ा होता है, अब दो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, एक लिगामेंट्स होती हैं, एक टेंडोन्स होते हैं। तो टेंडोन जो है वो जब पट्टे को हड्डी के साथ मिलाना होता है तो वहाँ पे एक वो बड़ा एक थिक किस्म का जो है वो एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, वो टेंडोन होता है। जब दो हड्डियों को आपस में, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो दो हड्डियों को आपस में मिलाया जाता है तो ये लिगामेंट्स होती हैं। अब स्क्रीन पर भी जो है वो आप देख सकते हैं, तो ये इजाज़त देती हैं कि ये हरकत करें। अब कोई ज़ोर के साथ, मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने बात की कि एक्सरसाइज वर्जिश के दौरान अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई इस तरह की किक लगाता है, या कोई चोट, इस तरह की चोट लग जाती है कि उसमें वो ज़्यादा जो है उस जगह पे खिंचाव आया है, तो इन लिगामेंट्स का क्या काम होता है कि ये उसको एक हद से ज़्यादा जो है वो जोड़ को आगे नहीं जाने देती, ताकि वो जोड़ अपने जो असल वो एक जिस तरह पिछली तस्वीर में हमने देखा था कि वो एक वो बाल एंड सॉकेट जो है वो एक दायरा सा जो है वो गोला उसके अंदर जो है वो फिट हुआ पड़ा है, तो उससे बाहर जो है वो पहला तो हो गया कि वो जो साख्त है वो उस तरह की है, और उसके बाद उस साख्त के ऊपर इसने हिफाजत, लिगामेंट्स ने हिफाजत दी है। अब लिगामेंट्स के बाहर जो है स्क्रीन पे जिस तरह जो है आपको सुर्ख रंग में नजर आ रहे हैं, ये पट्टे हैं, ये वो काटे हुए हैं, वो काट के तस्वीर दिखाइए, पट्टों के साथ जो सफेद रंग में आपको हड्डी से मुतसल एक चीज नजर आ रही है ये वो टेंडोन्स हैं। तो अब ये पट्टे उसके ऊपर एक तय होती है जो हिफाजती, जब हम हरकत करते हैं, अब हम हरकत में ये पट्टे हमें मदद दे रहे होते हैं, ये हमारे दिमाग से पैगाम आता है, वो इलेक्ट्रो ये जो मैकेनिकल सारे ये सिलसिला एक चल रहा होता है कि ऊपर से पैगाम आया है, फिर अंदर जो है वो सारा कॉन्ट्रेक्शन हुई है मसल के अंदर, एक खिंचाव आता है, एक हरकत आती है, तो ये वाले हिस्से जो हैं ये काम करते हैं। अब जो अजाफी किसी जगह पे जो है अगर हरकत आती है या पट्टा लगातार काम करके थक जाता है, तो उसकी बात उस थकावट के बाद जो है वो फिर ये पट्टा जो है काम करना छोड़ेगा। अब वो इसमें आपने एंकल स्प्रेन का लफ्ज़ सुना होगा, हम कहते हैं कि मसलन वो, तो उसमें भी चूंकि लिगामेंट्स का मसला बनता है, अब लिगामेंट पे जरूरत से ज्यादा जब खिंचाव आता है तो वो स्प्रेन जो है वो मसला बनता है, ये वाला मसला यहाँ पे भी हो सकता है। अब इसमें भी बड़ी मजबूत किस्म की ये लिगामेंट्स होती है, ये लिगामेंट हड्डी से भी ज्यादा इनकी मजबूती होती है अगर इनको खींचे तो अब यहाँ पे जब, लेकिन यह था कि कभी कभार उसकी जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा वो खिंचाव आता है, तो उसकी वजह से फिर जो है ये स्ट्रेन और मसल पे जिस तरह स्ट्रेन, इस तरह की हालात जो हैं इसका सामना करना पड़ता है। और ये एक स्ट्रक्चर होता है बर्सा, इसको कहते हैं बर्साइटिस जो है, जब इसकी इन्फ्लेमेशन होती है, ये एक तरह की सैक लाइक जो है वो थैलियां सी होती हैं।
अच्छा।
जो फ्रिक्शन के बचाव में मदद दे रही होती हैं, ये अंदर ही जब वो पट्टे हड्डियों से या मसल टेंडन वगैरह ये आप ऊपर उसके फ्रिक्शन हो रही होती है, इधर उधर जा रहे होते हैं, तो इन थैलियों का ये काम होता है कि उस ताकि वो पूरी तरह हड्डी से रगड़ के जो है उसको नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह की चीज़ों से बचाती हैं।
तो
बाज़कत ये होता है कि ज़्यादा रगड़ की वजह से किसी खास हिस्से में ज़्यादा उस पर दबाव की वजह से या उस खास हिस्से के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये जो बर्सा होते हैं ये इसमें इसको जो है इसमें सोजिश आ जाती है। जब ये सोजिश आती है तो सोजिश के बाद जो है एक दर्द का एहसास उस हिस्से में शुरू हो जाता है।
तो इसमें लेकिन इन्फ्लेम्ड हो गया कि तो क्या सूजन भी आ जाती है वहां पे ऊपरी हिस्से में, पता चलता है कि सूजन है या नहीं जब दर्द हो रहा होता है?
जब अगर ये हल जो है सोजिश इसकी बर्सा तक होगी तो बर्साइटिस जो है वो अंदर है, वो बाहर उतना उसका एहसास नहीं हो रहा होता, लेकिन एक जो है बेआरामी की जो कैफियत है, हल्के हल्के दर्द का एहसास जो है वो अंदर से आ रहा होता है। लेकिन अगर ज्यादा हो इसमें दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो साख्ते हैं वो भी अगर इसमें शामिल हो जाती हैं तो फिर जाहिर है वो सोजिश किसी खास हिस्से के अंदर होगी तो बाहर से भी उसका पता चल रहा होता है। अगर सतही तौर पे जो है ज्यादा सतह के करीब आ गई अच्छा। तो वहाँ पे सुर्खी गर्मी का भी एहसास होता है, लेकिन अगर नहीं तो एक वहाँ पे एक चलते फिरते या हरकत के साथ जो है एक दर्द का एहसास होता है तो इस चीज से पता चल रहा होता है।
अच्छा, जो सवाल मैंने आपसे कहा था, एक तस्वीर आपने दिखाई थी जिसमें आपने कहा था वो छोटी थैलियाँ टाइप होती हैं कि जो जो मसल्स होती हैं पट्ठों को और हड्डी के बीच में जो रगड़ होती है उस तो एक उसको कम करती हैं फ्रिक्शन को। आपने कहा कि उसमें सोजिश होती है वो बढ़ जाती हैं, तो ये जो चीज़ बढ़ती है तो इसमें आप ये बताएं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है वक्त जैसे जैसे जाता है या नहीं, हमें जो डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा इस वजह से?
देखिए, ये जो आम तौर पे मसाइल होते हैं कि जैसे हल्की फुल्की जो चोट कोई लगी है या जिस तरह बरसा की जिस तरह आपने बात की कि इस पे जो सोजिश आई है या पट्ठे पे जो है वो स्ट्रेन आ जाता है, स्प्रेन लिगामेंट पे आ जाता है, तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं अगर रेस्ट दिया जाए या कंजर्वेटिव वो ट्रीटमेंट जिस तरह आप बर्फ का मसाज कर लिया तो हल्का फुल्का, या अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे जो किसी गर्म चीज़ की टकोर कर ली, तो इस तरह की चीज़ों के साथ जो है वो कुछ दिनों में एक आध हफ्ते में वो अपनी असल हालत पे वापस आ जाता है। लेकिन जो इसमें जो असल एक नुक्ता है और बहुत अहम बात है
जी,
बाज़ का ऐसा होता है कि दर्द की शिद्दत ज़्यादा होती है, अंदर कोई पैथोलॉजी चल रही होती है यानी कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी जो है इस ये जो दर्द है उसका पेश खेमा होता है, मिसाल के तौर पर कैंसर। तो इस तरह की हालत में अगर किसी मुआशरे में किसी फ़र्द को है, मरीज़ को इस तरह की हालत का सामना है, साथ उसको बुखार भी हो रहा है और वो किसी इन्फेक्शन की इलामत जो है बुखार होता है और साथ जो है उसका तेज़ी के साथ वज़न कम हो रहा है और जिस्म की जो दूसरे जो वाइटल ऑर्गन हैं उनमें जो मसले का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी हालत में अगर इस तरह की इलामात सामने आ रही हैं तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करें, आपका जो करीबी तिब्बी मरकज़ है मुख्तलिफ जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मशवरे किए जाएँ कि असल ताकि असल तशखीस पे पहुंचा जाए। लेकिन जो आम दर्द होते हैं फिर इसका इनसार होता है कि दर्द का ओरिजिन जो है इसकी इब्तदा उस जिस्म के उस खास हिस्से में से कहाँ से है। अब तस्वीर मेरे ख्याल वो चली गई है, यहाँ पे जो कूल्हे की हड्डी में एक और जो मसला होता है वो सैक्रोइलियक जॉइंट का होता है। ये जो सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं ये पिछली तरफ जो है ये दो जोड़ होते हैं, इसका जो असल काम होता है कि देखें ऊपर से जो एक दबाव आ रहा होता है, हम जो ऊपर से मसले एक प्रेशर वगैरह जो नीचे वाले
तो थर्ड
की तरफ जाना होता है जी, एक तो उसको बर्दाश्त करता है और दूसरा ट्रांसफ़र इसका काम होता है कि नीचे की तरफ जो इसने मुंतकिल करना होता है तो वो इस जोड़ से गुजर के जाता है दोनों अतराफ में। मिसाल के तौर पर फिर इस पर जब रेपिटेशन के साथ कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट जब घूमते हैं हम, आप मिसाल इसकी ये ले लें कि आप टैक्सी से उतर रहे या आप है बिल्कुल आप फुटबॉल खेलते हुए किक लगाते हैं या आप जो है गोल्फ वगैरह जो लोग खेल रहे होते हैं, तो अगर किसी को इस तरह अंदाज से किक लगाई है कि वो एक टांग जो है वो एक टांग घूमी है, तो इस तरह के जो हालतें होती हैं या मतलब ऊपर वाला थर्ड जो है उसमें घुमा रहे हैं या नीचे वाला एक खास हालत में है, तो जो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती हैं तो वो अगर रेपिटेशन के साथ आ रही हैं उसमें मसल जो है उसकी रिक्रूटमेंट, हम कहते हैं कि मसल किसी खास हालत के लिए जो वो पट्टा है वो तेज़ी के साथ उसमें इन्वॉल्व होता है, तैयार होता है ताकि वो उस काम को पूरा करे, तो उसके जो अंदर से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे हैं उसकी जो मसल्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, तो ये कुछ चीज़ें शायद आम नाजरन की समझ में ना आए। तो ये होता कि
जी
रेपिटेशन के साथ जब किसी जगह पे कोई काम कर रहे होते हैं तो मसल पे मसला बनता है, वो मसल चूंकि मतलूबा जोड़ से मुंसलिक होते हैं तो
जी
फिर वो जोड़ भी इन्वॉल्व हो जाता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर एक चीज़ पे जो है हम ज़्यादा जो है जोर ना दिया करें। डॉक्टर साहब, एक जो सवाल मेरे ध्यान में आया, आपने कहा कि सिकाई करी जाती है बर्फ़ की और गर्म कपड़े से जो सिकाई की जाती है, तो ये कब की जाती है, यानी कब बर्फ़ इस्तेमाल करनी चाहिए और कब गर्म कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कोई वजूहात हो इस दर्द की?
जी मज़ीद जो वजूहत हैं, चूँकि मौजू वसी है तो उसमें ए वेस्कुलर निक्रोसिस होता है कि वो सेल्स डेथ जो है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती,
अच्छा
मुख्तलिफ आर्थराइटिस की जो अकसाम हैं वो ज़ाहिर है इस चोट को जो है वो नुकसान पहुँचा रही होती हैं, जब उम्र ज़्यादा होती है तो उम्र के साथ जो है वो हड्डी अंदर से खोखली खोखली हो रही होती
जी
है, तो ये मुख्तलिफ तरह की वजूहत इस तरह की और हैं। दूसरा जो सवाल आपने पूछा है कि गर्म और ठंडी जो टकोर है वो कब करनी चाहिए, देखिए जब भी किसी जगह पे जिस्म में चोट लगती है तो चोट के बाद ये होता है कि जिस्म का एक हिफाजती अमल होता है, जब सोजिश होती है तो असल में ये एक डिफेंसिव मेकनिज़म होता है जिस्म का कि उस खास हिस्से को वो ऐसी हालत में ले जाती है अकड़ाव वाली हालत में ताकि वो मज़ीद जो है उसको हरकत ना करे, यानी वो उसको ठीक होने का वक्त मिले। तो सोजिश के साथ जो है वो उसके बाद जो है वो दर्द का एहसास भी हो रहा होता है, तो बाज़ का ये ज़रूरत पड़ती है कि इस सोजिश को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए या तेज़ी के साथ ये जो है वो सोजिश ना आए ताकि कोई और इन्फेक्शन वगैरह या कोई नुकसान ना पहुँचे या लंबा अरसा ना रहे, तो वहाँ पर बर्फ़ की टकोर की जाती है। और बर्फ़ की टकोर का भी असूल ये होता है कि तकरीबन जो है वो 10-15 मिनट से ज़्यादा जो एक ख़ास हिस्से पे टकोर ना की जाए, अगर ज़्यादा टकोर की जाए तो उसका नुकसान ये होता है कि वहाँ पे खून की जो तरसील है वहाँ पे खून नहीं पहुँच पाता, अब जब खून नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ पे जो खली होते हैं वो मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं, या फिर जिस्म क्या करेगा कि खुद से वही सेल जो है अपनी एनर्जी खुद से वहाँ से बनाना शुरू कर देंगे, जब वो एनर्जी बनाते हैं तो अंदर से फिर वो हीट प्रोड्यूस होगी, यानी वो एक गर्मी निकलेगी और गर्मी सोजिश को ज़्यादा
ज्यादा
करती
करते
है,
हैं।
तो इसलिए एक ख़ास हद तक जो है वो वक्फे वक्फे के साथ बर्फ़ की टकोर करनी चाहिए। जब गर्म किसी चीज़ की टकोर करते हैं तो उसका कुलिया ये होता है कि चूंकि जिस तरह हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि दर्द के जो रिसेप्टर होते हैं वो
जी
सर्दी से ज़्यादा हसास होते हैं,
जी जी
तो उसको उस हालत को अगर कोई एक्यूट जिस तरह वो ताज़ा चोट नहीं है जिसमें सोजिश बढ़ने का खतरा हो तो वहाँ पे ये जो गर्म चीज़ की किसी की टकोर कर ली जाती है उसमें वो जो गीली होती है हॉट पैक वगैरह वो भी इस्तेमाल
जी
कर लिए जाते हैं, या किसी जगह पे वो रख के वो आमतौर पे वो कहते हैं
गरम
कि
कपड़े को प्रेस करके भी
बिल्कुल
इस्तेमाल करते
वो
हैं।
किसी तरह की भी खुश्क हीट जो है वो भी दी जाती है, तो उसकी वजह से फिर जो है वो दर्द के में एक तस्कीन का एहसास हो रहा होता है।
अच्छा, एक सवाल आया, मेरे ख्याल से हमारे पास वक्त नहीं है, शायद 1 मिनट हो, यही कि इन मसाइलों से बचने के लिए क्या करना चाहिए,
देखिए
बहुत ज़्यादा होगा छोटा
बिल्कुल
सा।
मौजू बहुत वसी है,
जी
असल जो वजह है कि अगर उम्र ज़्यादा है तो वहाँ पे ख्याल करना चाहिए कि कहीं पे जो बूढ़े अफराद हैं वो गिरे ना, या उस जो प्रोसेस या अगर हड्डियाँ को इस जगह इस हालत तक पहुँचने ही नहीं देना चाहिए, और जब आपको चोट तो आपको लग सकती है उसको तो आप नहीं रोक सकते, वो किसी भी हादसे की सूरत में आपकी जो है आप उस पर जो है वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं है, तो उस सारी चीज़ों से जो है एहतियात बरतनी चाहिए ताकि आपको चोट ना लगे और किसी भी ऐसी बीमारी का शिकार ना हो।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असदुल्ला सलमान, मेरे ख्याल से इसका जो इलाज और वो था वो रह ही गया, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर हो पाए आइंदा के प्रोग्रामों में आपको जो है दावत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।